ఆత్మేవా ఆత్మనా నాథ నా ధర్మం నా జస పుమాన్ ఇహేత భూతదయా సహ సత్యః స్థావరై అపి. యో ధ్రువేణాత్మనా నాథ నా ధర్మం న జసః పుమాన్ ఇహేత భూతదయా సత్యస్థావరైరపి యో ధ్రువేణాత్మనా నాథ నా ధర్మం న జసః పుమాన్ ఇహేత భూతదయా సత్యస్థావరైరపి.
स्वामी समाज में भी अच्छे पदों को मंत्री थे। किंतु ये सब कुछ क्या हुआ, चेतन महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित हो गए। श्रीनिवास आजाद कहते हैं, एकदम पूर्ण अवशेष मंडलपति श्रेणी सदा उत्सव ये गोस्वामी अपने अपने मंत्री जमीदार तथा विद्वान पदों का भी त्याग कर श्री चेतन महाप्रभु के आंदोलन में संसार की पतित आत्माओं पर अनुग्रह करने के लिए सम्मिलित हो गए। दीन गणेश को प्रणया उन्होंने भिक्षुकों का जीवन स्वीकार किया। वे केवल लंगोटी तथा हरी गुजरी कंधा धारण करते हुए वृंदावन में रहने लगे और चेतन महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते थे, जिससे वृंदावन की विगत कीर्ति पुनः खोज सके। इसी प्रकार जिन लोगों को सुख सुविधा प्राप्त है, उन्हें चाहिए कि वे पवित्र आत्माओं के उद्धार हेतु श्रीकृष्ण भावना आंदोलन में सम्मिलित हो। भूत दया माया तथा तीन गणेशों को लिया, इन सभी शब्दों से यही अर्थ निकलता है कि शब्द उन लोगों के लिए है जो मानव समाज को उचित ज्ञान उठाना चाहते हैं। अर्जन साधक मनुष्य को चाहिए कि चेतन महाप्रभु के चेतन महाप्रभु स्वामी तथा सभी उन महर्षि भद्रीजी के आदेशों का अनुसरण करते हुए श्रीकृष्ण भावना में आंदोलन में सम्मिलित है। हरे शुभों के लिए अपने जीवन को व्यर्थ न जाने दे। मनुष्यों को चाहिए कि उस अच्छे कार्य में लगाए, अंततः इस शरीर को नष्ट होना है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसका उत्सव के सारे संसार में धर्म फैलाने के लिए सुधार निकले। हरे कृष्ण।
वर्ष पहले इस देश में एक बहुत बड़े ब्राह्मण हुए ब्रह्मर्षि, जिनको दधीची मुनि कहा जाता है। ये उन महान ऋषि का उद्गार है। देवताओं से कहते हैं, यो अध्रुवेण आत्मना, जो इस नश्वर शरीर से आत्मा से न तो धर्म करता है न जस कमाता है, जीवों पर दया द्वारा, ये तो भूत दया, जो जीवों पर दया करके कीर्ति नहीं कमाता है या धर्म का आचरण नहीं करता है, तो वह मनुष्य अस्थावरों के द्वारा भी स्वच्छ है। अस्थावर कहते हैं जो जीव एक ही जगह स्थित रहते हैं, जैसे वृक्ष का जहाँ जन्म हुआ है वही जीवन भर रहता है, कहीं इधर उधर जा नहीं सकता है, उसको स्थावर कहते हैं। पर जो मनुष्य घूमते हैं, बोलते हैं, कई जगह जाते हैं, वे यदि धर्म का आचरण न करें और जीव पर दया करके अमर कीर्ति न कमाएं, तो वे वृक्षों के द्वारा भी सोचनीय हैं। वृक्ष भी सोच करते हैं कि हाय, इसको क्यों मनुष्य जन्म मिला, बेकार जन्म गया। ये दधीची मुनि का उद्गार है और देवताओं के प्रति, इसीलिए इसमें संबोधन है नाथा। नाथा माने हे हमारे स्वामी गण, देव लोक से आए हैं देवता लोग, तो स्वामी हैं ही सबके मालिक हैं। इस शिष्टाचार का पालन करते हुए दधीचि मुनि कहते हैं, हे नाथा, हे देवताओं, जो मनुष्य इस अध्रुवेण आत्मना, इस अध्रुव शरीर से जीव पर दया करके धर्म नहीं कमाता है या जस नहीं कमाता है, तो उस मनुष्य का जीवन वृक्षों के द्वारा भी सोचने लायक, उनसे भी गर्हित है। इसके परपर्ट में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दधीचि मुनि का यह उद्गार एक विशेष बात की याद दिलाता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जीवों के सुख के लिए दया करके उनको कृष्ण भावना से जोड़ने के लिए अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। त्यक्त्वा सुदुस्ते सुरेपसितराज लक्ष्मी, भगवान का जन्म हुआ था नवद्वीप में, बहुत सुंदर नगर था और उनका परिवार पूर्ण अनुकूल था। पत्नी तो साक्षात लक्ष्मी ही थी, विष्णुप्रिया जी, परंतु विवाह के तुरंत बाद भगवान ने पत्नी का त्याग कर दिया। केवल 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। जब वे 20 वर्ष के थे उस समय उनका विवाह हुआ और 24 वर्ष में संन्यास ले लिए। कोई परिवार में दिक्कत नहीं थी, पत्नी अनुकूल थी और अपनी माता परम स्नेहमयी थी, सची माता, सब कुछ सुख भरा था, सारा नवद्वीप पूजा करता था। उस क्षेत्र के सबसे बड़े ब्राह्मण श्री अद्वैताचार्य, वे तो चैतन्य को, निमाई को भगवान की तरह मानते थे, और श्रीवास पंडित बहुत बड़े ब्राह्मण, वे अपने पुत्र की तरह मानते थे। सारा सुख था, सब बहुत सम्मान था, लेकिन फिर भी भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने त्याग दिया नवद्वीप को और अपने परिवार को। इसलिए भूत दया, जीवों पर दया करके उनको कृष्ण से जोड़ने के लिए, और यही किया उनके शिष्यों ने, 6 गोस्वामियों ने। 6 गोस्वामियों में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुजगौ, रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामी, इन्होंने भी वही किया। अपना बहुत बड़ा बड़ा पद छोड़ दिया, बहुत बड़े बड़े जमींदार थे ये, एक प्रकार के राजा ही थे, बहुत धनी थे, सारा सुख छोड़ दिए जीवों पर दया करके उनको सिखाने के लिए। ये सब अपना अपना पद छोड़ करके भगवान चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण किए। बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं, एक एक गोस्वामी का बताने में तो बहुत समय लगेगा, हम एक दो गोस्वामी का बताना चाहते हैं। कैसे उन्होंने त्याग किया। रूप गोस्वामी के विषय में और श्रील सनातन गोस्वामी के विषय में तो हम कभी कभी कह चुके हैं, लेकिन अन्य गोस्वामियों में जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके विषय में कुछ नहीं कहे हैं, तो उन्हीं के विषय में कहना चाहते हैं किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने त्याग किया। एक बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, दो भाई थे, इनके पिताजी का नाम था गोवर्धन मजुमदार, और इनके ताऊ थे इनके पिता के बड़े भाई हिरण्य मजुमदार। ये दो भाई थे और इनकी वार्षिक आमदनी कितनी थी, 8 लाख स्वर्ण मुद्रा। आठ लाख, और परिवार में कौन था, एक ही लड़का रघुनाथ दास, रघुनाथ नाम था, छोटे भाई के पुत्र थे, हिरण्य को कोई पुत्र नहीं था, तो दोनों भाइयों के बीच में एक ही लड़का था। इतनी बड़ी संपत्ति थी, तो एक दिन अकस्मात भगवान चैतन्य महाप्रभु इनके गांव में गए, सप्तग्राम करते, तो वहां इन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया है रघुनाथ गोस्वामी, और लगे आग्रह करने कि हम आपके पास रहेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत पक्का बैरागी बनाते थे, उन्होंने उपदेश किया कि नहीं अभी घर जाओ, घर जाकर के सामान्य रूप से विषय भोग करो, मरकट बैराग मत करो। फिर उन्होंने कह दिया मैं वृंदावन जा रहा हूं, वृंदावन से जब मैं आऊंगा जब जैसी तुम्हारी इच्छा उसमें करना है, लेकिन अभी घर जाओ। तो भगवान के चरणों का दर्शन कर लिया रघुनाथ दास गोस्वामी ने, इनका मन संसार में बिल्कुल नहीं लगता था, वे हमेशा यही चिंता करते थे कब मैं नीलाचल जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु का पता लगाते रहते थे कि वृंदावन से कब आ रहे हैं, इनको पता लगा कि वे आ गए हैं, तो रात दिन जोते रहते थे, हा गौरांग है जीवन सर्वस्व, आप कब मिलेंगे। और एक एक दिन उनका युगों के समान बीतता था, घर छोड़ करके जाना चाहते थे नीलाचल। इसी बीच में क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु आ गए इनके गांव में, और बहुत लोगों के साथ ये गए मिलने के लिए। नित्यानंद प्रभु बहुत प्रेम किए, कहा कि हमारे बगल में बैठो, बैठे, और भगवान नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दिया तुम बहुत धनी हो तो यहाँ आज जितने लोग आएंगे उनको दही चिवड़ा खिलाओ, तो श्री नित्यानंद प्रभु पानीहाटी गांव में थे, उन्होंने आज्ञा दिया रघुनाथ गोस्वामी को कि चीरा दही महोत्सव करो। चीरा दही महोत्सव बिहार में, बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है। जब दही अधिक होता है तो उसको दही चीरा महोत्सव कहते हैं, और जब दही कम होता है तो चीवड़ा को दूध में फुला करके या पानी में फुला करके दही के साथ खाते हैं, चीनी डालकर, तो इसको चीवड़ा दही महोत्सव कहते हैं। चीवड़ा दही महोत्सव में चीवड़ा ज्यादा होता है, दही कम होता है, और दही चीवड़ा महोत्सव में दही ज्यादा होता है, चीवड़ा कम होता है। तो भगवान ने नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दे, तुम दही चीवड़ा महोत्सव करो। तो रघुनाथ गोस्वामी आज्ञा दिए बहुत से सेवकों को, तो बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, वो लोग जुटाए सैकड़ों गाड़ियों पर, कई मन चिवड़ा इकट्ठा हो गया, और सैकड़ों घड़ों में दही आया, भिन्न भिन्न लोग लाए। वहां बहुत बड़ा समाज जुट गया, हजारों लोग जुट गए, तो सबके लिए दो दो कुल्हड़ बड़ा बड़ा बर्तन मिट्टी का, जिसमें दही रखा जाता था और चूड़ा परोसा गया। सबको पचासों लोग परोस रहे थे, बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ है। वह फेस्टिवल इतना प्रसिद्ध है कि आज तक ये महोत्सव मनाया जाता है, इसी महीने में पड़ता है, मई के महीने में चीवड़ा दही महोत्सव करते हैं। इस्कान में भी यह बहुत प्रसिद्ध है। नित्यानंद प्रभु उस महोत्सव में खाए, सभी वैष्णव जुटे थे, सब लोग भोजन किए, तब रघुनाथ ने सबको दक्षिणा दिया। उस समय दक्षिणा दिए 100 रुपया नित्यानंद प्रभु को, 100 रुपया मतलब 100 सिक्का स्वर्ण मुद्रा दिए, सबको यथा योग्य दान दिए, और एक ही आशीर्वाद मांगे कि मैं मुझे चैतन्य का चरण कमल मिलना चाहिए। सबने आशीर्वाद दिया ठीक है। शाम हो गई तो राघव पंडित वहीं के पानीहाटी के ही थे, रात को नित्यानंद प्रभु वहीं रुके तो रघुनाथ दास भी वहीं रुके। यद्यपि उनके साथ सैकड़ों लोग आए थे उनकी निगरानी रखने के लिए, सबको लगाया था गोवर्धन मजुमदार ने कि कहीं ये लड़का भाग न जाए, ये हमेशा भागने की चेष्टा करते थे नीलाचल जाने की। तो गोवर्धन मजुमदार ने रघुनाथ का विवाह कर दिया है एक बहुत सुंदरी कन्या से, जो अप्सरा के समान सुंदरी थी, ये सोच करके कि इसका मन उलझ जाएगा स्त्री में। लेकिन रघुनाथ का मन तो चैतन्य चरण में लगा हुआ था, तो वो कभी देखे भी नहीं अपनी पत्नी को, आसक्त होने की बात तो दूर रही। जिसका मन भगवान के चरण कमल में लगा हुआ है वो क्या आसक्त होगा। तो कोई भी उपाय किया गया, रघुनाथ दास गोस्वामी आसक्त नहीं हुए, तीसरी की तरफ कभी देखते भी नहीं थे। प्रतिदिन रघुनाथ अपने घर से भागना चाहते थे, पर गोवर्धन मजुमदार ने लगा दिया था आदमी बहुत सा, देखते रहना। 24 घंटे उन पर पहरा बैठ गया, कहीं जा नहीं सकते थे, सबकी ड्यूटी थी कि तुम इतने से इतने समय तक देखा करो। अब उनका विरह और बढ़ गया भगवान चैतन्य को देखने के लिए, अधीर हो गए, रोने लगे। बकते थे बीच बीच में, हा गौरांग, हा प्राणनाथ, हा प्रियतम, मुझे कब इस संसार से मुक्त करेंगे, कब अपने चरणों के पास बुलाएंगे। इस तरह से विलाप करते थे। इस विलाप को सुन करके उनकी माता जी ऐसा समझी कि मेरा बेटा पागल हो गया है। वे अपने पति देव से कहती हैं, इसको घर में बंद रखिए, ये कभी भी भाग सकता है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो पतिदेव ने समझाया कि किसी भी उपाय से उसको बांध करके रखना असंभव है, वह बेचारी और दुखी हो गई। उसने सुना कि इसको बांध रखना असंभव है क्योंकि गोवर्धन जी ने कह दिया कि बांध करके तो पशु को रखा जाता है, ये बंद कर रहेगा नहीं। तो इसीलिए वे और पहरेदार बढ़ा दिए। ये सब देखते रहते थे। एक दिन का समय था, इनके गुरु महाराज, परिवार के गुरु जदुनंदनाचार्य आए थे घर पर। उनके स्वागत में बहुत देर हो गई सब लोगों को रात्रि में, और उनको रात्रि के अंतिम पहर में भोर में निकलना था। रात भर सब लोग सोए थे, जगे थे, इस कारण से भोर में नींद आ गई। सभी पहरेदार सो गए। ठीक वैसी दशा हुई जैसे मथुरा में भगवान के जन्म के समय सब सो गए थे। जो होने वाला होता है हो करके रहता है, सब सो गए। तो रघुनाथ विदा करने चले गुरु जी को। गुरु जी का घर बहुत दूर था, 3-4 माइल था। तो वे उन्हीं के साथ, गुरु जी के साथ निकल गए विदा कराने के लिए। लेकिन वे बहुत प्रसन्न थे कि आज हमको घर से निकलने का मौका मिला है। वे बहुत दूर चले गए, तब उनके गुरु जी ने कहा ठीक है अब लौट जाओ। तो गुरु की बात मान करके वे कहे ठीक है अब लौट जाऊ घर चला जाऊं मैं। तो उनके मन में घर का असली अर्थ था जगन्नाथपुरी। वे घर से बाहर आ गए थे, किसी को पता नहीं लगा। भोर में सभी अंधकार था, फिर भी वे जतनंदनाचार्य से अलग हो करके और चल रहे अपने घर जगन्नाथपुरी। ऐसे रास्ते से जा रहे थे जिस पर कोई परिचित व्यक्ति न मिले, अकेले एकांत रास्ता है, तो जंगल के रास्ते पगडंडी से निकले और जगन्नाथपुरी जाने में नवद्वीप से एक महीना लगता है। लेकिन एक महीना के गंतव्य रास्ते में इतनी तेज गति से जा रहे थे, केवल दो दिन में पार किए नवद्वीप से चल करके। ये रास्ता भक्तों को मालूम है, जिससे सबसे पहले इस समय नवद्वीप से आएंगे कलकत्ता, कलकत्ता से फिर खड़गपुर, खड़गपुर के बाद मिदनापुर एक शहर पड़ता है, उसके बाद जलेश्वर बालेश्वर, उसके बाद जगन्नाथपुरी, जो बहुत लंबा रास्ता है। एक महीना चल करके लोग पहुंचते थे और उस रास्ते को रघुनाथ दास गोस्वामी दो दिन में पार किए, खा नहीं रहे थे कभी, नंगे पाव चलते थे। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि अपने घर के बगीचे में भी जब निकलते थे तब भी पालकी से चलते थे, घर के बगीचे में घूमने के लिए पालकी से जाते थे, कभी पैदल नहीं चले थे। 50 गज भी पैदल नहीं चले थे। वे रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान चैतन्य को देखने के लिए रात दिन दौड़ करके जा रहे थे जगन्नाथपुरी, इसलिए दो दिन में पहुंच रहे। भूख प्यास की कोई चिंता नहीं थी। दिन बीतने पर, दिन पूरा होने पर शाम को वे रुकते थे रास्ते में। दो दिन तो रुके, किसी ने दूध पिला दिया, बस वही पी करके रह गए थोड़ा सा। पर उनको खाने पीने की चिंता नहीं थी, चिंता थी भगवान गौरांग के चरण को देखने की। जब पहुंचे जगन्नाथपुरी तो उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने कुछ साथियों के साथ कृष्ण कथा कर रहे थे। रघुनाथ पहुंचे और जाकर प्रणाम किए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथी दामोदर पंडित ने बताया, स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर जी ने कहा ये गोवर्धन मजुमदार के पुत्र हैं। तो भगवान चैतन्य तो जानते थे सर्वज्ञ हैं, वे तुरंत कहे रघुनाथ तुमको कारागृह से मुक्ति कैसे मिल गई? ये कई दिन से भूखा है, इसको भोजन देना चाहिए। तो गोविंद जो सेवा करते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु की, गोविंद ने कहा कि प्रसाद पालो। तो रघुनाथ ने कहा कि मैं अभी स्नान करूंगा, समुद्र स्नान, और उसके बाद जगन्नाथ जी का दर्शन कर लूंगा, तब प्रसाद पाऊंगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट दे रहे थे गोविंद, लेकिन स्नान करने गए समुद्र में, फिर दर्शन किए, दर्शन करके आए, तब थोड़ा सा प्रसाद दिए। भगवान सब शुद्धि रखते हैं, वो गोविंद को आज्ञा दिए कि इसको प्रसाद जगन्नाथ जी का दिया करो। और यह बहुत कष्ट सह करके आया है, इस पर ध्यान रखो। लेकिन रघुनाथ को तो सबसे बड़ा सुख था, भगवान का दर्शन हो गया, भोजन की चिंता नहीं थी, वे वैराग्य की मूर्ति थे। इन्होंने सोचा कि जब घर छोड़े हैं तब भीख मांग करके खाना चाहिए, भिक्षु बन करके। तब सिंह द्वार के पास रहते थे, वहीं पर भिक्षा मांगते थे। सिंह द्वार के पास कुछ लोग प्रसाद खरीद करके रखते हैं, भिक्षुकों को दिया करते हैं। तो वहीं खड़े होकर के कई घंटे भीख मांगते थे, भीख के लिए खड़े रहते थे। वही रघुनाथ दास गोस्वामी जो जिनके सेवा के लिए सैकड़ों नौकर थे, भोजन पहुंचते थे, वही रघुनाथ अब भिक्षा के लिए लाइन में खड़े हैं। 5 दिन बीत गया है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से पूछा कि रघुनाथ दिखाई नहीं देता है, कहाँ खाता है? तब गोविंद ने कहा कि वो क्षेत्र में भिक्षा मांगकर खाते हैं। तो भगवान चैतन्य ने कह दिया, ये भिक्षा मांग करके खाना ठीक है, लेकिन ये वेश्या का आचार है, आशा रहती है कि कोई आया तो वो देगा। इसको सुन लिया रघुनाथ ने, तो फिर वे भिक्षा मांगना भी छोड़ दिए। इसके बाद आनंद बाजार में जो अन्न बच जाता है, जिसको दुकानदार लोग फेंक देते हैं, गायों को डाल देते हैं, गायें भी जब नहीं खाती हैं तब वो अन्न सड़ करके नाली में बहता है। तो वही अन्न भात नाली से छान करके पत्तल पर रह करके रघुनाथ खाते थे, सड़ा हुआ अन्न, जिसको गाय भी नहीं खाती थी। पानी में उलाते थे, पानी में धो करके और भात को खाते थे, और नमक नहीं, कुछ नहीं उसमें। तो भगवान को तो सब पता है, वे पूछते रहते थे इस समय क्या कर रहा है रघुनाथ। तो स्वरूप दामोदर जी ने बताया कि वो बहुत त्याग से रहता है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे कि रघुनाथ नाली से भात छान करके फिर पानी में धो करके उसी भात को खा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने देखा, पीछे से गए धीरे से और झपट करके वो पत्तल पर से भात उठा लिए। फिर रघुनाथ ने कहा, प्रभु ऐसा मत कीजिए, ये आपके योग्य नहीं है। आप मत खाइए, आप मत खाइए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो लेना था और लेकर के तुरंत भात को मुख में लगा लिए, खाने लगे। और जब रघुनाथ ने कहा कि आपके योग्य नहीं है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसा मधुर प्रसाद मैं समस्त जीवन में नहीं पाया था। इतना सुंदर स्वादिष्ट, स्वरूप दामोदर जी को कहने लगे चैतन्य महाप्रभु, देखिए यह रोज रोज इतना सुंदर प्रसाद खाता है और हमको निमंत्रण नहीं दिया है। फिर स्वरूप दामोदर जी ने भी कह दिया कि नहीं, आपको ऐसा नहीं खाना चाहिए। यह केवल इसी के योग्य है, रघुनाथ के योग्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर जी को रघुनाथ को दिया, कहा कि इस या आज से स्वरूपेर रघु, इस स्वरूप का रघु कहा जाएगा, आप इसकी संभाल कीजिए। तो रघुनाथ इतने संकोचित थे कि चैतन्य महाप्रभु से कभी बात नहीं करते थे, कभी उनके तरफ देखते नहीं थे, सिर नीचा रखते थे बात करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा स्वरूप दामोदर जी से कि आपका शिष्य हमसे बात भी नहीं करता है, आपसे तो जरूर करता होगा। तो स्वरूप दामोदर जी ने कहा कि हाँ हमसे तो बात करता है, ये यही कहता है कि चैतन्य महाप्रभु हमारा घर छुड़ा दिए तो अब हमारा क्या कर्तव्य है वो भी बताएं। तो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे रघुनाथ से कि रघुनाथ, मैं जो जानता हूं इन्हीं की कृपा से जानता हूं, स्वरूप दामोदर जी की कृपा से। ये बहुत बड़े विद्वान हैं, ये जो कुछ कहेंगे वही परम प्रमाण होगा। तुम इन्हीं से कुछ कुछ सीखो। तब स्वरूप दामोदर जी ने कहा देखो, कभी अच्छा मत खाना, वो अच्छा कहां खाते थे, और कभी सांसारिक चर्चा मत करना, किसी की निंदा मत सुनना, किसी के गुण दोष को मत कहना, अच्छा खाना नहीं, अच्छा पहनना नहीं, लोग चर्चा मत कर ले, सब समय कृष्ण का नाम जपना। इतना बड़ा वैराग्य उन भक्तों में था, रघुनाथदर्शी स्वामी वे जब वृंदावन आए, राधा कुंड पर रहते थे, तो 24 घंटे में एक बार थोड़ा सा छाछ पीते थे, भोजन में वही छाछ था थोड़ा सा, और 1 लाख जप करते थे, और वही राधा कुंड से ही स्मरण करके कि द्वारका में इतने वैष्णव हैं, इनको प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करते थे, वृंदावन में रहने वाले भक्तों को साष्टांग, नवदीप में रहने वाले, जगन्नाथपुरी में रहने वाले समस्त वैष्णवों को मन ही मन याद करके और दंडवत प्रणाम करते थे। भोजन कितना कम, छाछ पीना और दंडवत प्रणाम, ऐसा लिखा कि 1000 दंडवत प्रणाम करते थे भक्तों को और भगवान को, सदा नाम जपते थे। आप लोगों ने सिख भक्तों में पढ़ा होगा मन शिक्षा, उनका एक बहुत प्रसिद्ध है ग्रंथ है मन शिक्षा, मन को शिक्षा। बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। ग्रंथ लेखन करते थे, तीर्थों का उद्धार करते थे, और दिन रात कृष्ण का नाम जपते थे। तो इस तरह रघुनाथ दास के स्वामी थे। श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छ। बड़े बड़े राज्य को, मंडलपति श्रेणी को तुच्छ समझ करके छोड़ दिए, और भूतवा दीन गणेश कहु, और दीनों में अतिशय दीन बन करके, दीनों का राजा बन करके रहते थे, दीनों का राजा है। यह ऐसा पद है कि किसी भी भक्त के लिए सुलभ है, दीन बनने में क्या दिक्कत है, न पैसा कमाना है और न कपड़ा अच्छा जुटाना है और न तो संन्यास लेना है, दीन बनना है। दीन गणेश कहो, दीन जनों में सबसे श्रेष्ठ, ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, दीन बन जाना है। दीन बनना बहुत बड़ा काम है, किसके लिए दीन बने, जीवों पर दया करने के लिए। जीवों पर दया करने के लिए रूप ने पद छोड़ा, सनातन ने पद छोड़ा है, रघुनाथ दास के स्वामी ने धाम छोड़ा है, छोड़ करके ये जीवों का उपकार कर सके। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही करना है, इन गोस्वामियों से पहले श्रील दधीची मुनि कहते हैं, अध्रुवेण आत्मना, यह शरीर अध्रुव है, आज है कल नहीं रहेगा, और ध्रुव है अनित्य है, इस अनित्य देह से जीवों पर दया करना चाहिए और धर्म करना चाहिए। धर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य, हमारा सब समय सभी देश में क्या कर्तव्य है। कर्तव्य है भगवान में भक्ति उत्पन्न कर लेना है, भक्ति होती है भगवान का नाम जपने से, प्रणाम करने से, तो यही कर्तव्य है। तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं कर पाता है, भक्ति नहीं कर पाता है और जीवों पर दया करके अमर जस नहीं कमा लेता है, उस व्यक्ति पर वृक्ष भी सोच करते हैं। स्थावर जो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, जहां जन्म भगवान ने दिया है वहीं घाम सहते हैं, दुख सहते हैं, जाड़ा सहते हैं, आंधी सहते हैं, पर वे भी अपने अंगों से दूसरे का उपकार करते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, एक बार वे जमुना के तट पर गाय चराते हुए गाय बहुत दूर निकल गए, गर्मी का महीना था, धूप काफी थी, जमुना के किनारे भगवान चल रहे थे अपने सखाओं के साथ, 10 मित्रों के साथ। कृष्ण तेजस्वी बरुथप सुबल श्रीदाम आदि सखा थे, इनको दिखा करके भगवान कहने लगे, देखो मित्रों ये महाभाग्यवान है वृक्षगण, कितने उपकारी हैं, स्वयं घाम सहते हैं, सह रहे हैं, शांतो वारयन्ति में, और हम लोगों का घाम से निवारण करते हैं, रक्षा करते हैं, घाम से, हिम से, वर्षा से, आंधी से हम लोगों की रक्षा करते हैं। देखो इनके जीवन का एक एक अंग दूसरे के लिए काम आता है, भगवान ने गिनाया है मूल बलकल दार भी, इनका मूल, इनका बलकल, बोकला, इनका पत्ता, इनकी छाया, सब दूसरे जीव के काम में आते हैं। देखो कितने बड़े उपकारी हैं, उपकार कर रहे हैं। वृक्ष पर पक्षी अपने आप बैठते हैं, उनके घर का काम करते हैं, इनके शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जो बेकार जाता है, यहां तक कि भस्म, शरीर का भस्म बनता है लकड़ी से, लकड़ी को जला करके राख बनती है, वो राख कभी कभी साधु महात्मा भी अपने देह पर धारण करते हैं, और साधुओं में सबसे बड़ा साधु भगवान शंकर भस्म धारण करते हैं। और उस भस्म से हम लोग बर्तन मांजते हैं, धोते हैं, साफ हो जाता है, तो ऐसा इसका जीवन है कि सब काम आ रहा है। भगवान ने ध्यान से देखने को कहा अपने सखाओं को, पश्यता एतान महाभारत, देखो ऐसा जीवन होना चाहिए, इतावत जन्म साफल्यम देही नाम है देही से प्राणय अर्थ है दिया वाचा से वाचरित सदा इतावत जन्म साफल्यम जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरे का उपकार किया जाए। भगवान को दृष्टांत में वृक्ष ही मिले, वृक्ष सबसे ज्यादा उपकारी है सबके। आज का समय तो विपरीत है, वृक्षों को काट रहे हैं और रोड बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य का। ये रोड बढ़ने से, चौड़ा होने से कोई लाभ नहीं है। वृक्ष कटना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, वृक्ष रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि सबसे बड़े उपकारी ये हैं। एतावत जन्म साफल्य, यही जीवन की सफलता है। अपने पास जो कुछ है उसके द्वारा दूसरे का उपकार करें। भगवान चैतन्य ने छोड़ दिया अपने गृहस्थ जीवन को, सद्गोस्वामियों ने अपने सुख को तिलांजलि दिया, केवल दूसरे जीवों का हित करने के लिए, मनुष्यों का हित करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी इसी परंपरा में हुए, जो अपने दैहिक सुख का परित्याग करके अमेरिका में गए। उस समय उनके लिए वह बड़ा त्याग था, हवाई जहाज उस समय भी चल रहे थे, फिर भी प्रभुपाद जी जल के जहाज से गए। बहुत कष्ट सह करके गए। आना हुआ तो हवाई जहाज से आए, लेकिन जाने में बहुत बड़ा कष्ट हुआ। दो बार हार्ट अटैक हुआ प्रभुपाद जी का। पर किसी भी तरह से जीवों का हित करना था, ये कर गए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अपने सुख सुविधा का ध्यान न करके दूसरे के लिए कष्ट सहना, दुख सहना, यही वैष्णव का सिद्धांत है। और यहां तक कहते हैं कि सद्गोस्वामी जन चैतन्य महाप्रभु तो आदर्श उपस्थित किए ही, इससे भी पहले, बहुत पहले दधीची मुनि ने यह बात कही है। यह शरीर अभ्रुव है, अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा। तो इस अनित्य देह द्वारा दूसरे का उपकार करना चाहिए। उपकार किया जा सकता है, भगवान के नाम का प्रचार करें, कीर्तन करें, यही सबसे बड़ा उपकार है। और तरह से जीवों का हित उतना नहीं होगा जितना भगवान की भक्ति से। तो भक्ति सिखाना यह बहुत बड़ा उपकार है। एक बात मेरे मन को आज बहुत टच की कि भूतवा दीन गणेश कहू, ये सद्गोस्वामी जन दीन गणेश कौ हो गए, दीनों के सरदार, दीनों में सबसे, लाचारों में सबसे बड़े लाचार। ये स्वयं हो गया, अपनी इच्छा से हो गया। भूत्वा दीन गणेश कम, मैं इस पर विचार कर रहा था कि दीन बनने में क्या दिक्कत है, कोई साधन जुटाना नहीं है। यदि कोई सुविधा है अपने पास तो उसको छोड़ने में दिक्कत क्या है। ये शरीर अंततः चला ही जाएगा। चाणक पंडित कहते हैं कि सन निमित्ते वरण त्यागो विनाश नियते सती। जब जिस वस्तु का विनाश निश्चित है तो उस निश्चित विनाशशील वस्तु के द्वारा यदि उत्तम कार्य हो जाता है तो त्याग से तो त्याग ही सबसे श्रेष्ठ है। आजकल बहुत भक्त चाहते हैं हम ब्राह्मण हो जाएं, हम सन्यासी हो जाएं। क्या करोगे सन्यास लेकर के? केवल एक मान मिलेगा, कि मान का सब संसार भूखा, दीन बनना नहीं चाहता। दीन जो भी अपनी सुविधा है उसका त्याग करना है। अरे नई नई उपाधि क्या लेनी है? हम ब्राह्मण हो जाएं, हम सन्यासी हो जाएं, इससे लाभ क्या होगा? हम जो नहीं है वह हो करके अपनी घाटा में पड़ जाएंगे। अभी जो शरीर है, शरीर की जो अवस्था है, उसी में बंधन है और शरीर की उपाधियों में सजना है, ठीक नहीं है। दीन बनना है, भूत्वा दीन गणेश को, दीन बन करके नम्र भाव से भगवान का स्मरण करें। आज भी ब्रज में कोई ऐसे दीन बन करके रह सकता है। कई ऐसे महात्मा हैं जो दूसरे के घर में रहते हैं, अपना घर नहीं है, अपना कोई स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी मधुकरी करके भिक्षा मांग करके रह जाते हैं और भगवान का नाम रटते रहते हैं। दीन बनने से लाभ होता है कि कोई तिरस्कार कर नहीं सकता है। दीन का तिरस्कार क्या होगा? जब कोई व्यक्ति अपने को बड़ा समझता है तब पग पग पर भय रहता है कि हमारा तिरस्कार हो जाएगा, हमको मान नहीं मिलेगा। लेकिन पहले से ही जो मान का त्याग कर चुका है उसको मान न मिलने का दुख होगा नहीं। भूत्वा दीन गणेश को बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। वे गोस्वामी जन कोई प्राकृतिक विपद में नहीं थे, कोई अभाव नहीं था, लेकिन अभाव स्वयं कर लिए, दीन बन गए। जैसे सनातन गोस्वामी जब वे गृह त्याग करके चैतन्य महापुरुष से मिलने आ रहे थे बनारस में, तो पैदल आ रहे थे, आते आते पटना के पास पहुंचे, नवद्वीप से आ रहे थे। पटना के पास हाजीपुर एक शहर है, तो हाजीपुर में जब पहुंचे तब वहां उनके बहनोई श्रीकांत जी मिले। श्रीकांत जी ने कुछ देख कर पहचान लिया कि ये सनातन गोस्वामी है। तो देख करके वे अपने निकट आए और पूछने लगे, कहाँ जा रहे हैं? तो पैर में जूता नहीं था, कपड़ा कोई अच्छा नहीं था। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, उनके बहनोई जी ने कहा कि घर चले। तो सनातन जी ने कहा, घर ही तो जा रहे हैं, अब तक परदेश में थे, अब घर जा रहे हैं। घर का मतलब है वृंदावन, अब घर जा रहे हैं। तो श्रीकांत जी ने एक बहुत अच्छा फाइन ऊन का बना हुआ कंबल, जो उजला ऊन था, दिया, बहुत कंबल। तो उस कंबल को लेकर के केवल अपने बहनोई का सम्मान करने के लिए वे ओढ़ करके चल दिए। जाड़ा का दिन था, खोपीन पहने हैं और बहुत बढ़िया कंबल ओढ़ लिए और आए। बनारस में पता लग गया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कहाँ है। वे चंद्रशेखर जी के घर पर रहते थे। चंद्रशेखर जी का घर दशाश्वमेध घाट के पास था। चैतन्य महाप्रभु वही रहते थे, भिक्षा करते थे तपन मिश्र के घर विश्वेश्वरगंज में। भगवान से मिले सनातन गोस्वामी, दोनों बहुत देर तक रोते रहे एक दूसरे का आलिंगन करके। उनमें सनातन गोस्वामी देख लिया भगवान के आंख को, देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु के आंख को कि बार बार हमारे कंबल पर देख रहे हैं। सनातन गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा, उन्हें समझ गए कि ये कंबल को पसंद नहीं कर रहे। तो तुरंत गंगा जी के तट पर गए। एक साधु अपना कंथा गुदड़ी को सुखवा रहा था। तो सनातन जी गए, कहे कि आप हमारा एक काम कीजिए, आप एक कंठा दे दीजिए हमको और एक कंबल दे लीजिए। तो समझा कि ये मजाक कर रहा है। उसने कहा कि स्वामी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप इतना अच्छा कंबल दे रहे हैं और एक चिथड़ा लेना चाहते हैं, गुदड़ी लेना चाहते हैं, उसे मजाक मत कीजिए। तब सनातन गोस्वामी ने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे जरूरत है। वे कंबल डाल दिए उन साधु पर और उनका कंथा ले लिए, कौबीन कंथा श्रीतल, और चैतन्य महाप्रभु के पास आए। तो चैतन्य महाप्रभु इसको देखकर बहुत खुश हुए मैंने उदाहरण दिया कि सनातन जब कोई वैद्य किसी रोगी की चिकित्सा करता है तो अच्छा वैद्य थोड़ा भी रोग बचने नहीं देता है। कृष्ण सबसे बड़े वैद्य हैं। उन्होंने देखा कि तुम राज छोड़ दिए, भीख मांग करके खाते हो, तो मधुकरी करने वाला व्यक्ति इतना महंगा कंबल ओढ़े ये ठीक नहीं लगता, इसीलिए कृष्ण ने तुम्हारा रोग दूर कर दिया, अब अच्छा हो गया, कंथा दे दिए और कंबल दे दिए, बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल फिट है। तुम ही सोचो कि इतना कंबल अच्छा ओढ़ करके जाओगे मधुकरी करने, लोग क्या कहेंगे। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते थे जब त्याग कोई करता था। त्याग वही कर सकता है जिसमें वैराग्य हो, वैराग होने पर त्याग सहज हो जाता है। तो इस तरह का वैराग था गोस्वामी जनों में। और वो त्याग स्वर्ण उनके द्वारा होता था। त्यक्त्वा तूर्ण मशेष मंडल पते श्रेणी सदा तुष्ट। कौपीन कंथा से तो करुणया, करुणा से दूसरे जीवों पर दया करने के लिए कौपीन और कंथा धारण करते थे। कंथा का अर्थ होता है बहुत पुराना कपड़ा फेंका हुआ और उसी को सी करके जोड़ करके जाड़े की रक्षा की जाती है, जाड़े से अपने शरीर को बचाया जाता है, इसको कंथा कहते हैं। तो इस तरह से रेशमी वस्त्र पहनने वाले बड़े बड़े जमींदार, राजा और फिर केवल पुराना कपड़ा उसका थोड़ा सा कौपीन पहनते थे और कंथा ओढ़ते थे। दूसरे जीव का हित करने के लिए ये प्रचार कर जानते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत है, भोगों को भोगने से अशांति बढ़ती है, कलह बढ़ता है और त्याग से शांति मिलती है। त्यागा शांति रनंतर। इसीलिए भूतवा दीन गणेश को दीन बन करके रात इसलिए भगवान ने जो उपदेश किया है शिक्षाष्टक में अमानिना मान देना, मान नहीं चाहना और दूसरे को मान देना, ऐसा करने से कीर्तन सब समय हो सकता है। कीर्तनीय सदा हरि। दीन बन करके रहना इस संसार में बड़ा लाभदायक है, भजन में कोई विघ्न नहीं हो पाएगा। भजन में विघ्न तब होता है जब व्यक्ति अपने को बड़ा मानने लगता है, मान की अपेक्षा रखता है। तो ये बात बहुत साफ हो गई है दधीची मुनि के उदाहरण से। उन्होंने अपने शरीर को दे दिया देवताओं के हित के लिए, कितना बड़ा दुष्कर त्याग है, लेकिन इसको भी किया उन्होंने। श्री दधीच हरिचंद नरेशा सह धर्म हित कोटि कलेश, बहुत से राजा ऐसे हो गए हैं और बहुत से ब्राह्मण जिन्होंने अपने देह को दे दिया दूसरे के लिए। ब्राह्मणों में दधीची मुनि का उदाहरण सबसे बड़ा है। इनके यहाँ देवता लोग भीख मांगने आए और उनको भेजा कौन, स्वयं भगवान। तो ये उदाहरण है, हम लोगों को अपने जीवन में जितना हो सके अपनाना चाहिए और उद्देश्य यही है कि हमारी भक्ति अक्षुण रहे, भक्ति में बाधा न हो। इसके लिए ये सब जरूरी है। दीन गणेश को कर्णया कौपिन कंथा शीतल जय श्री प्रभुपाद।